पूर्व पाठ में कहा गया था कि सहकारी दार्ढ्यात् प्रत्यभिज्ञावत पद प्रतीति, जैसे सहकारी संस्कार की दृढ़ता के कारण प्रत्यभिज्ञा होती है, स एवायंगत घट सोयम देवदत्त, इस तरह से जो प्रतिभिज्ञा होती है वैसे ही पद की प्रतीति होती है। फिर उसके आगे देखिए ग्रंथ में क्या कहा गया कि प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष, प्रत्यभिज्ञा का जो प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष का अर्थ लेना है ज्ञान होता है, क्योंकि जैसे वो देवदत्त की प्रत्यभिज्ञा होती है या घट की प्रत्यभिज्ञा होती है, तो वह जो देवदत्त का ज्ञान है या घट का ज्ञान है, कौन सा ज्ञान, स्वयं देवदत्त है यह जो ज्ञान है या स्वयं घट यह जो ज्ञान है, इसी को कहते हैं प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष। तो इस प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष में, मान इस प्रत्यभिज्ञा ज्ञान में अतीत अतीता अपि पूर्व अवस्था स्फुरत्येव, इस प्रत्यभिज्ञा के ज्ञान में अतीत जो अवस्था रहती है वह अवस्था भी स्फुरित होती है, माने अतीत काल में भूत काल में जो बाला जो देवदत्त है उसका भी जो है ना यहाँ पर स्मरण होता है। भूत काल में जिस घट घरे को आपने देखा उस भूतकालिक घरे का भी जो है प्रत्यभिज्ञा में स्मरण होता है। ततः माने उसके बाद पूर्व पूर्व पद अनुभव जनित, अब ऐसा है कि अभी पद की प्रतीति कैसे हुई ये तो पहले इन्होंने बताया, और पद प्रतीति करने के लिए इनको बहुत ज्यादा जो है ना परिश्रम करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वर्ण जो है वह आसुतर विनाशी हैं, क्रमिक आसुतर विनाशी हैं, तो एक समय में वो इकट्ठा हो नहीं सकते, और तो फिर कैसे पद प्रतीति होगी। तो उसके लिए कहा कि नष्ट वर्णों की प्रतीति तो हो जाएगी संस्कार से, और अंतिम वर्ण की प्रतीति हो जाएगी साक्षात समवाय संबंध से। तो साक्षात संबंध और संस्कार के द्वारा जो है पद की प्रतीति एक समय में हो जाएगी। जब पद की प्रतीति में इतनी कठिनाई थी तो वाक्य की प्रतीति में भी इतनी ही कठिनाई होगी ना, क्योंकि तो अगर वर्ण नष्ट है तो पद तो नष्ट है ही, और पद नष्ट है तो फिर वाक्य की प्रतीति कैसे होगी। जैसे वर्णानाम समूह पदम, ऐसे ही पदानाम समूह वाक्यम। तो जब वर्ण विनाशी है इसका मतलब है कि पद भी विनाशी हुआ, वर्ण विनाशी है तो वर्ण का समूह नहीं हो सकता, तो पद विनाशी है तो पद का भी समूह नहीं हो सकता, तो फिर वाक्य की प्रतीति कैसी होगी। तो उसमें भी सेम प्रोसेस होता है, वही बता रहे हैं कि ततः, ततः माने पद प्रतीति होने के बाद, एक पद की प्रतीति हो गई, दूसरे पद की प्रतीति हो गई, उसके बाद तो पूर्व पूर्व पद अनुभव जनित संस्कार सहकृत है ना, वही बात है कि जैसे पहले बताया था ना कि पूर्व पूर्व वर्ण का अनुभव बाल अनुभव से जो जनित माने उत्पन्न जो संस्कार है, ऐसे यहाँ पर बताया कि पूर्व पूर्व पद के अनुभव का अर्थ याद रखिएगा सुनना, तो पूर्व पूर्व पद के श्रवण से जनित माने उत्पन्न जो संस्कार है उस संस्कार के सहकृतेन माने सहायता से या द्वारा, उस संस्कार के द्वारा अंत्य पद विषयेन श्रोत्रेन्द्रियेन, अंत्य पद जो है जिसका विषय है इसका श्रोत्र इंद्रिय का, उस श्रोत्रीय इंद्रिय के द्वारा श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा पदार्थ प्रत्यय अनुगृहीतेन, पदार्थ प्रत्यय, प्रत्यय माने ज्ञान, तो पदार्थ ज्ञान के अनुग्रह से, यहाँ भी अनुग्रह का आप सहायता कर लीजिए कि पदार्थ ज्ञान की सहायता से अनेक पद अवगाहिनी वाक्य प्रतीति ही क्रियते, अनेक पदों का अवगाहिनी माने विषय करने वाली, अवगाहिनी माने विषयनी, तो अनेक पद विषयनी जो है वाक्य की प्रतीति होती है। तदिदम वाक्यम आप्त पुरुषेन प्रयुक्तम सत् शब्द नामकम प्रमाणम, इस तरह का जो वाक्य है वह वाक्य आप्त पुरुषेन प्रयुक्तम, जब आप्त पुरुष के द्वारा प्रयुक्त होता है, प्रयोग किया जाता है वाक्य, वही वाक्य जो है प्रयुक्तम सत माने इस तरह से प्रयुक्त होने पर, सत का अर्थ कर लीजिए होने पर, तो इस तरह का वाक्य आप्त पुरुष के द्वारा प्रयुक्त होने पर माने उच्चारित होने पर जो है शब्द नामकम प्रमाणम उच्यते, इसी तरह का वाक्य जो है वह शब्द नाम का प्रमाण कहलाता है। अब प्रमाण है, प्रमाण है मतलब प्रमितिकरणम प्रमाणम ना, तो इसमें प्रमिति क्या है या प्रमा क्या है, इसका फल क्या है। तो आगे कहते हैं फलम तु अस्य वाक्यार्थक ज्ञानम। इस यह शब्द नाम का जो प्रमाण है, इस शब्द नाम के प्रमाण से क्या ज्ञान होता है, क्या प्रमा होती है, क्या प्रमिति होती है। तो कहते हैं कि फलम तु अस्य वाक्यार्थक ज्ञानम, इसका फल है माने शब्द रूपी प्रमाण से क्या होता है, तो वाक्यार्थ ज्ञान होता है, वाक्य के अर्थ का ज्ञान होता है। इसी वाक्यार्थ ज्ञान को ना हम लोग शाब्द बोध कहते हैं। तो शाब्द बोध और वाक्यार्थक ज्ञान ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तो फलम तु अस्य वाक्यार्थक ज्ञान माने शब्द नामक प्रमाण का फल क्या होता है, माने कार्य क्या, शब्द नामक प्रमाण कारण हुआ और इस कारण का कार्य क्या हुआ, तो फल का अर्थ कार्य समझना है। तो फलम तु अस्य वाक्यार्थक ज्ञान माने शब्द रूपी प्रमाण से वाक्यार्थक ज्ञान रूपी कार्य जो है वह होता है। तत् शब्द लक्षणम प्रमाणम लोके वेदे च समानम। यह जो शब्द नाम का प्रमाण होता है यह लोक में भी समान रूप से माना जाता है और वेद में भी समान रूप से माना जाता, माने दोनों जगह वेद में भी और लोक में भी जो है शब्द को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। किस तरह के शब्द का को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है वो तो पहले आ गया कि आप्त पुरुषेन प्रयुक्तम वाक्यम शब्द नामकम प्रमाणम। फिर भी थोड़ा अंतर है लोक के शब्द प्रमाण में और वेद के शब्द प्रमाण में, क्या अंतर है। कहते हैं कि लोके तु अयम विशेषः, लोक में यह विशेष है या भेद है क्या, कि यह कश्चित एव आप तो भवति न सर्वः। लोक में जो है कुछ ही लोग जो है आप्त पुरुष होते हैं। आप्त पुरुष मतलब जो वास्तविक बात को बताते हैं, मिर्च मसाला नहीं मिलाते हैं, जो जैसी वस्तु है उसको वैसा ही बोलने वाले। कश्चित एव आप तो भवति लोके, कुछ ही लोग ऐसे होते हैं, न सर्वः, सब के सब नहीं होते हैं। इसलिए किंचित एव लौकिकम वाक्यम प्रमाणम, कुछ ही जो है लौकिक वाक्य जो है वो प्रमाण के रूप में माने जाते हैं या स्वीकार्य होते हैं। यत आप्त वक्तृकम, जो वाक्य आप्त वक्ता के द्वारा प्रयुक्त होते हैं उन्हीं लौकिक वाक्य को जो है प्रमाण माना जाता है। सारे लौकिक वाक्य प्रमाण नहीं माने जाते, क्योंकि पुरुष जो है वो सारे आप्त नहीं होते। वेदे तु, लेकिन वेद में ये बात नहीं है। वेद में जो है परम आप्त श्री महेश्वरेन कृतम सर्वम एव वाक्यम प्रमाणम। वेद में जो है उसमें आप्त की क्या चर्चा करें, वहां तो परम आप्त होते हैं। कौन है परम आप्त, तो परम आप्त श्री महेश्वरेन, महेश्वर जो है वही परम आप्त पुरुष हैं वेद में। एक ही वहां पर जो है आप्त महापुरुष है, आप्त परम पुरुष है, वह है महेश्वर। और उनके द्वारा कृतम सर्वम एव वाक्य, उनके द्वारा जो प्रयुक्त वाक्य है वैदिक वाक्य, वो सारे के सारे वाक्य जो है प्रमाण है। क्योंकि सर्वस्यैव आप्त वाक्यत्वात्, कि वेद में जितने भी वाक्य हैं सब के सब आप्त पुरुष के द्वारा ही उच्चरित हैं। वो आप्त भी का परम आप्त पुरुष के द्वारा उच्चरित हैं, और वो परम आप्त पुरुष कौन है, तो श्री महेश्वर हैं। तो इस तरह से लौकिक और वैदिक जो शब्द प्रमाण है इसमें ये विशेष अंतर है कि लोक में सारे वाक्य प्रमाण नहीं होते, क्योंकि सारे वाक्य आप्त पुरुषों के द्वारा उच्चारित नहीं होते, सभी के सभी पुरुष आप्त पुरुष नहीं होते। लेकिन वेद में सारे वाक्य जो हैं वो प्रमाण माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक ही आप्त पुरुष है, वह है परमेश्वर, वह है महेश्वर, और उनके द्वारा सारे वैदिक वाक्य प्रयुक्त किए गए हैं। इसलिए सारे के सारे वैदिक वाक्य जो हैं वो शब्द प्रमाण के रूप में माने जाते हैं, और उस शब्द प्रमाण से वैदिक वाक्यार्थ का बोध जो है वह होता है, वैदिक वाक्य का शाब्द बोध होता है। इस तरह से कहते हैं आगे ग्रंथ में कि वर्णितानि चत्वारि प्रमाणानि, इस तरह से चारों प्रमाणों का जो है यहाँ वर्णन किया गया। एतेभ्यः अन्यत् न प्रमाणम्, इसके अलावे और कोई जो है वह प्रमाण नहीं है, माने न्याय दर्शन में इसके अलावे और कोई प्रमाण स्वीकृत नहीं है। जो भी प्रमाण अन्य दर्शन वाले सब मानते हैं इससे भिन्न, वो सारे के सारे प्रमाण जो हैं अत्रैव अंतर्भावात्, इन्हीं चारों प्रमाणों के अंदर जो है वो अंतर्भावित हो जाते हैं, इससे अलग प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है। अब थोड़ा थोड़ी आप में जिज्ञासा हो रही होगी कि इस तरह से अन्य अन्य प्रमाण सब और क्या है, तो इन्होंने दो अन्य प्रमाणों की यहाँ पर चर्चा की है, एक अर्थापत्ति प्रमाण की और एक अभाव प्रमाण की, दो की चर्चा की है। लेकिन इसके अलावे भी और बहुत सारे जो है ना वो प्रमाण जो है दर्शनांतरों में स्वीकृत हैं, जैसे ऐतिह्य को प्रमाण माना गया है, और इसी तरह से जो है ना और भी प्रमाणों को जो है ना स्वीकार के अभ्यास को प्रमाण माना गया है, इसी तरह से कई और प्रमाण हैं। तो ये जितने भी प्रमाण हैं दर्शनांतर में उनको न्याय दर्शन वाले नहीं मानते, कहते कि वो प्रमाण तो प्रमाण है लेकिन इन्हीं चारों के अंतर्गत वो समाहित है, अलग से उसको प्रमाण मानने की जरूरत नहीं है। तो वह जो दो प्रमाण है जिसकी ये चर्चा करते हैं, खंडन करेंगे कि इसको अन्य प्रमाण के रूप में, भिन्न प्रमाण के रूप में स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, उसमें पहला जो है वो आता है अर्थापत्ति प्रमाण। परीक्षा में भी जो है ना ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि अर्थापत्ति प्रमाणांतर नहीं है, इसका प्रतिपादन करिए अथवा अर्थापत्ति प्रमाण का खंडन करिए, इस तरह से प्रश्न आता है, तो उसको हमें पढ़ना है। अब ये अर्थापत्ति प्रमाण को मानने वाले कौन है वो पहले समझ लीजिए। मीमांसा दर्शन वाले और वेदांत दर्शन वाले जो हैं वो अर्थापत्ति प्रमाण को मानते हैं, ठीक। हाँ, व्याकरण दर्शन वाले भी जो के यहाँ भी जो है ना अर्थापत्ति प्रमाण को माना जाता है, स्वीकार किया जाता है। इस पर न्याय दर्शन वाले कहते हैं कि ननु अर्थापत्ति ही पृथक प्रमाणम अस्ति। नहीं, न्याय दर्शन वाले नहीं, अभी जो है ना पूर्व पक्षी का की बात बताई जा रही है, अर्थात जो अर्थापत्ति को पृथक प्रमाण मानते हैं उनका पक्ष जो है पहले प्रस्तुत किया जाता है। ये शास्त्र की रीति है कि पहले प्रतिपक्षी की बात बताई जाती है उसके बाद उसका खंडन किया जाता है। तो पहले यहाँ पर प्रतिपक्षी की बात बताएंगे, लेकिन उसको बताने से पहले मैं थोड़ा अर्थापत्ति के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे प्रमाण और प्रमा दोनों के लिए प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण भी होता है और प्रत्यक्ष प्रमा भी होती है। प्रमा और प्रमाण दोनों के लिए प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये मैंने शुरू में बताया होगा। इसी तरह से अर्थापत्ति शब्द जो है इसका भी प्रमाण के लिए भी अर्थापत्ति प्रमाण ये प्रयोग होता है, और प्रमा के लिए भी अर्थापत्ति प्रमा इस तरह से प्रयोग होता है। अब इसमें व्युत्पत्ति का केवल अंतर है, अगर प्रमाण के रूप में अर्थापत्ति शब्द का प्रयोग करना हो तो व्युत्पत्ति करेंगे अर्थस्य आपत्ति ही यस्मात्। क्या कहेंगे? अर्थस्य आपत्ति ही यस्मात्, माने अर्थ की आपत्ति हो जिससे, जिससे किससे, तो वही प्रमाण से। तो यहाँ पर अर्थापत्ति का अर्थ हो जाएगा प्रमाण। यहाँ जो हमने आपत्ति शब्द का प्रयोग किया, इस आपत्ति का अर्थ कर लीजिए प्रतिपत्ति या ज्ञान कह लीजिए। तो अर्थ की प्रतिपत्ति जिससे हो उसे हम अर्थापत्ति कहते हैं। यह जो अगर व्युत्पत्ति करेंगे अर्थस्य आपत्ति यस्मात्, तो अर्थापत्ति क्या हो जाएगा? प्रमाण कहलाएगा। अगर इसमें हम षष्ठी तत्पुरुष करते हैं कि अर्थस्य आपत्ति ही अर्थापत्ति ही, इस तरह से षष्ठी तत्पुरुष अगर करेंगे तो यह जो है ना प्रमा कहलाएगा, यह अर्थापत्ति प्रमा। तो इस तरह से प्रमा और प्रमाण इन दोनों अर्थों में जो है अर्थापत्ति का प्रयोग होता है। मैं चाहता हूँ कि आज का पाठ यहीं रखते हैं, आगे जो है अर्थापत्ति प्रमाण के बारे में पढ़ेंगे।